right at the corner of Shepherd and Warden. Dr. Padmaja ka phone number hai 416-299-7466. Brampton TV and Appliances, agar koi bhi TV ya appliances aapko chahiye ho, to aap sab Brampton TV and Appliances pe pahunchiye. Aapne jana hai 801 Bovair Drive in Brampton. Ye Chinkuzi and Bovair ka major intersection banta hai. To aapne jana kahan par hai? Brampton TV and Appliances, Sultan Bhai ka phone number hai 905-450-2828 inka phone number hai. इसके साथ साथ फजल वदूद साहब कहते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या आपको इंश्योरेंस चाहिए हो, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, तो आप फजल वदूद साहब से कांटेक्ट करें. इंश्योर प्रो के फजल वदूद साहब के पास 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है. 9056075000 इनका फोन नंबर है. कानों में कोई खराबी हो तो हेयर मैक्स के शिराज भाई दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, एक टोरंटो एक मिसिसागा में. ग्रिल पे अपने कानों की सफाई के लिए हो जाए, आप जाइए हेयर मैक्स. हेयर मैक्स के शिराज साहब का फोन नंबर है 416-792-8792. अगर आप साजो आवाज का हवाला देंगे तो आपको सब आपकी जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा. हेयर मैक्स के शिराज 416-792-8792 इनका फोन नंबर है. और साहब और किसकी बात करूं मैं आपके लिए, न्यू फातिमा ग्रोसर्स, रमजान अल मुबारक की आपने शॉपिंग करनी हो या आपने जो है ईद की शॉपिंग करनी हो, तो सब तमाम शॉपिंग जो है आप ग्रोसरीज की न्यू फातिमा ग्रोसर्स पे पहुंचाइए. 512 ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मैकलॉगलन के कॉर्नर पर, कादर भाई उनकी बेगम यहां पर होते हैं. 9058487000 इनका फोन नंबर है. नॉट टू फॉरगेट ज्वेलरी, बहुत सारे लोग रमजान मुबारक में ज्वेलरी खरीदते हैं, तो सब आपको ज्वेलरी के लिए हम भेजते हैं रूबी ज्वेलर्स पर. इकराम भाई यहां पर होते हैं 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में. ये एयरपोर्ट रोड एंड डेरी का मेजर इंटरसेक्शन है. और आप जाइए साहब रूबी ज्वेलर्स के इकराम भाई के पास एंड गेट अ वेरी गुड डील. 9058776888 इनका फोन नंबर है. और चलिए साहब, नॉट बाय चॉइस बाय फोर्स कहते हैं कि हम जो है उनको खुशामदीद कहते हैं. अब शादिया मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसी हैं आप?
मजे भाई, कैसे हैं? बड़े आज तो आप चमके हुए हैं, का चिक्कर किया है,
चमक रहे?
हाँ,
वाह,
वैसे मुंह पे लगाइए.
या अल्लाह, तुमने मेरी दुआ कबूल कर ली.
क्या चक्कर क्या है?
चक्कर है, चमक रहे, बस चमकते चमकते
चमक रहे हैं ना. दो चीजें और भी बहुत चमक रही हैं हमारे मुल्क में ना, दो अखबार जो है ना वो बहुत चमक रहे हैं.
अच्छा.
हाँ, एक जंग अखबार, एक नवाए वक्त अखबार. अब उनकी क्या है यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? वो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि जंग अखबार में अगर आप रोटियां लपेटे ना नान शान, तो वो सारा घी जो है वो जज्ब कर लेते हैं.
हाँ, उसका उसमें से जो ब्लैकनेस है वो नहीं आती,
वो नहीं आती. ठीक है, वो सारा वो
अच्छा अखबार है,
बड़ा अच्छा अखबार है. और दूसरा अखबार जो है नवाए वक्त, उसमें अगर आप रोटियां लपेटे तो रोटियां देर तक गर्म रहती हैं.
अच्छा, वेरी गुड. उसका भी इंक नहीं निकलता?
नहीं नहीं,
बट जी ठीक है. वरना होता क्या है कि आपने अखबार में लपेटा तो न्यूज जो है
उसका काला रंग आ गया सारा. वर्ड
नहीं, पूरी पूरी न्यूज ट्रांसफर हो गई,
ट्रांसफर हो गई
रोटी पे.
रोटी तो रोटी पे साथ रोटी खा रहा था. न्यूज पढ़ो.
नहीं नहीं, न्यूज आपको भूलेंगे नहीं, आपने खा ली न्यूज.
सही है सही है सही है. ऐसे है तो ये मजबूरी जो है ना, सिर्फ ओनली हैपन्स इन पाकिस्तान.
ओनली,
हाँ हाँ,
द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड,
वर्ल्ड. बिल्कुल, आपको पता ही है रोटियां लपेटने का तो और कहीं पे होता नहीं है ना.
दो ही कंट्री बड़ी बेस्ट है.
जी जी जी,
एक अपना पाकिस्तान, दूसरा अपना कनाडा.
कनेडा होता है माजिद भाई, कनेडा होता है. देखें आप कनाडा सीखे. कनेडा,
कनाडा.
ये तो कनाडा आप बोल रहे हैं, ये तो कनाडा तो लैंग्वेज होती है ना, कनेडा
बोल रहे हैं आप. समझती है लैंग्वेज है ये. हाँ, हाँ. ये देखें आप. अच्छा, ये तस्बी आपने गले में क्यों बांध ली?
हमारे भाई बस मैंने कहा. लोग बड़े अच्छे से मुझे जो है बहुत अरसे से कह रहे हैं कि भाई वो इंटरसेप्ट का वो बेचारा जो रिपोर्टर है उसका मैंने इंटरव्यू क्या ले लिया है. उसमें वो कह रहे हैं जी आपको प्रोग्राम, ही स्पीक्स ओनली इंग्लिश. ठीक है, वो पाकिस्तानी है बट ही हैज यू नो बीन ब्रॉट अप इन यूएस, तो वो बिल्कुल उस बेचारे को उर्दू नहीं है. उसके लिए मुझे कह रहे हैं आप ये हेलो एंड वेलकम उसको क्यों बोलती हैं, आप क्यों नहीं कुरान की आयत से शुरू करती? भाई हाथ धो गया है. भाई उसको प्रोग्राम में बुलाने के लिए हेलो एंड वेलकम ही करना है ना, आप उसको ये तो नहीं बोल सकते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या हाल है भाई, ये तो नहीं आप कह सकते।
कह सकते तो पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो आप देखिए टीवी पे भी जब हमारे पास भी आते हैं तो सवाल हम करते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद शुरू करते हैं, शायद उन्होंने झूठ बोलना हो,
झूठ बोलना हो,
मगर वो अल्लाह का नाम लेके
झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं तस्वीर जो है गले में डाल लेती हूँ, कभी इस तरह का कोई मैसेज आया तो एकदम मैं तस्वीर ओढ़ना शुरू कर।
गुड आइडिया
है ना, गुड आइडिया ना वैसे, बस मैं क्या तो नू मेरे
आप मेरे साथ है कि कितनी अकलमंद
स्मार्ट हो गई हूँ मैं, स्मार्ट हो गई, बहुत ज्ञान दे दिया मुझे भाई आपने,
बजा मत दूंगा मैं,
नहीं नहीं अपना दें, आप बचा के रखें अब मरने से पहले आप मुझे देना अभी दे दिया तो जाया हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें जी हमारे साथ अब फ्राइडे को, ये जो फ्राइडे, आज तो ट्यूसडे है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को 4 o'clock हमारे साथ होंगे मस्जिद इब्राहिम से लोग, सुल्तान भाई भी होंगे और मस्जिद इब्राहिम के भी कुछ ऑफिशियल्स आएंगे, तो वो फंड रेजिंग के लिए आ रहे हैं। आपको पता ही है कि मस्जिद इब्राहिम जो है वो बड़ी जबरदस्त ओल्डेस्ट मस्जिद है और वहां पे बड़ा अच्छा काम होता है, 600 जो बच्चे हैं वो अपना एजुकेशन भी लेते हैं।
ओल्डेस्ट मस्जिद,
ओल्डेस्ट, हाँ जी,
इट्स नॉट द ओल्डेस्ट,
लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, चलो लार्जेस्ट मॉस्क है और उसके अंदर बहुत सारी उन्होंने वो चीजें बनाई हुई हैं, लाइब्रेरी है और वहां पे लोगों को अगर कोई काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए होते हैं, फ्यूनरल के सर्विसेज चाहिए होते हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज भी वो देते हैं, तो वो अपना फंड रेज करने आ रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ जरूर जुड़ें फ्राइडे को 4 to 6 o'clock तक और अपने जो भी कोई आपके ज़कात और अतियात हैं उनमें से आप उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जनाब आपने फोन करना है अगर आप अपने घर की बूथी जो है जिसको कहते हैं घर की चकल, अगर आप रोशन करना चाहते हैं, हसीन बनाना चाहते हैं, अगर बूथी जैसे हम बहुत सारा पेंट करके मुंह पे आते हैं ना बूथी बनाने हाँ के लिए, तो उसी तरह आपको घर के ऊपर पेंट करने की जरूरत नहीं है,
पेंट करके आई है हाँ।
तो अगर आपने घर की बूथी रोशन बनानी है
हम जस्ट करेंगे ओके,
तो आप विक्रमजीत को फोन करें, है जी। देखो माई भाई मैं बूथी पे ही जो पेंट करके आती हूँ तो मैं बैठने के लायक और आप डर नहीं रहे, जिस दिन मैंने ये पेंट करना बंद किया ना आप बहुत डरेंगे, चीखे मारेंगे इधर और आपके सुनने और देखने वाले भी चीखे मारेंगे, समझ आइए।
हाँ जी हाँ जी, तो आपने पहले बता दिया मुझे,
बता दिया ना, बट ठीक है फिर, तो यूनिक साइंस जनाब विक्रमजीत को आप फोन करें, आपके घर का की जो बूथी है बड़ी अच्छी हो जाएगी और रोशन भी हो जाएगी। इनका नंबर है 6475274482 और इसके अलावा जनाब नान एंड कबाब पे जाएं अच्छे खाने खाने के लिए, है जी। तो अच्छा खाना जो है वो ये है कि वो ग्रिल्ड है ताकि आप पितले दुबले रहे माजिद भाई की तरह, तो नान एंड कबाब 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट F3 मिसिसागा में है, इनका नंबर है 9052829797 पे ये मौजूद है, तो आप जाएं और उधर खाना खाएं। अच्छा जनाब सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो बिल C-63 ये जो ट्रूडो साहब कह रहे थे कि हम लेकर इसको आएंगे, तो ये इसलिए वो कहते हैं जी हम लाना चाहते हैं क्योंकि ये जो ऑनलाइन कंटेंट जो है बहुत सारा जो खराब सा आ जाता है जिसमें के बच्चों को बुलिंग भी की जाती है और भी बहुत कुछ किया जाता है, तो वो इसकी जो डिटेल्स हैं सारे ये जो आरिफ विरानी साहब हैं मिनिस्टर हमारे उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा जी कि हम इसको इसलिए लेकर आ रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह हैं, उसकी वजह यह है कि हम ये जो बिल लेकर आ रहे हैं ये ऑनलाइन हार्म को कंट्रोल करेगा, खासतौर पे जो सेक्चुअली विक्टिमाइज किया जाता है बच्चों को या जो कि इस तरह के जो सर्वाइवर्स होते हैं जिसमें कि डीप फेक यूज किए जाते हैं विच इज जनरेटेड बाय AI, तो उससे हम कैनेडियंस को बचाना चाहते हैं। इसके अलावा वो उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर जो है हम कहते हैं कि हम कुछ लोगों को एक कैबिनेट के कुछ 5 लोगों का एक कमीशन बनाएंगे, वो सेफ्टी कमीशन जो है डिजिटल सेफ्टी कमीशन जो है उसका काम ही होगा विद इन 24 आवर्स इस तरह के कोई खराब कंटेंट अगर आएगा तो उसके पास पावर्स होंगी वो उनको रिमूव कर सकेंगे, और जो है फिर उसके बाद वो कहते हैं जी ये सर्विसेज जो है ये इसमें इतनी हम जो है मेजर्स डाल रहे हैं कि जब भी कभी कोई देखेगा तो वो फौरन रिपोर्ट कर सकेगा, या तो डायरेक्टली आप रिपोर्ट कर सकते हैं कैनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन को, या आप जाहिर है कि जो हम कमीशन बनाएंगे उसको कर सकते हैं, उसमें हेट स्पीचेस अगर किसी के खिलाफ आती हैं वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो यानी ऑनलाइन बुलिंग और हार्म जो है उसके लिए जो है वो कहते हैं जी कि हम टेबल करने जा रहे हैं ये अपना लेजिस्लेशन, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि लोगों को ऑनलाइन हार्म से बचाया जाए खासतौर पर बच्चों को, तो आप देखेंगे कि ये पास होता है कि नहीं, वैसे तो बड़ा अच्छा ये
Excellent. This is the first step they have done it. यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में ये ऑलरेडी पास हो चुका है
जी, जी, जी.
और यहाँ पर अगर दोनों मिलकर कंट्रीज करेंगे तो इट्स गोना बी अ वेरी हेल्पफुल टू यंगस्टर्स स्पेशली.
बिल्कुल हाँ जी. अच्छा जनाब, फेडरल जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि कॉम्पिटिशन ब्यूरो जो है उसने जो हमें जैसे कहा था कि हमको फ्रीज कर देना है और ये जो मर्जर हम लाना चाहते थे एक जिसमें कि इन्होंने अनाउंस किया था कि जी हम 123 मिलियन डॉलर्स का फंड देंगे 8 होम बिल्डर्स को ताकि ये इनोवेटिव जो हैं वो सॉल्यूशंस लेकर आ सकें और 5000 अफोर्डेबल होम्स बना सकें, तो ये थ्रेशोल्ड जो है हम फ्रीज कर सकते हैं. उन्होंने कहा जी कि ये जो आज डिटेल्स दे रही थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि ये अपनी जो वीकली इकोनॉमिक अपडेट दे रही थी दूसरे मिनिस्टर्स के साथ उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज जो है वो करता है विद जीडीपी, लेकिन हम जो है इसको फ्रोजन रखेंगे 93 मिलियन डॉलर्स पे जो कि थ्रेशोल्ड है सिंस 2021. इसमें वो कहते हैं जी कि फंडिंग फॉर होम बिल्डर्स इज एलोकेटेड थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग इनोवेशन फंड और ये फंड जो है ये प्रोग्राम जो है ये हेल्प करेगा ये रेंट टू ओन स्कीम्स को और दूसरे जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए. तो इसलिए लाना तो जरूरी है लेकिन ये जो अमाउंट है इसको हम फ्रोजन रखेंगे. इसके अलावा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ये जो फार्मा केयर है इसके ऊपर भी बात करते हुए कहा जी कि ये जो हम लेकर आ रहे हैं ये कैनेडा का फिस्कल स्टैंडिंग जो है उसको जेपडाइज बिल्कुल नहीं करेगा. वो कहते हैं जी हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल वे से आगे जाना चाहते हैं. वो कहते हैं जी कि ये जो हमारी फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट आई थी उसके रहते हुए हम पे जाहिर है कि लिबरल्स के ऊपर बड़ा ये प्रेशर है कि आप जो अपना डेफिसिट है उसको कम करें क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्लो हो रही है और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं. तो वो कहते हैं जी कि हम कहती हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अपने डेफिसिट को बिलो 1% ऑफ जीडीपी रखें बिगनिंग इन 2026-27. इस वक्त जो करंट जो फिस्कल डेफिसिट है वो या तो है एट या बिलो ये जो इनकी प्रोजेक्शन थी 40.1 बिलियन डॉलर्स पे. तो वो कहते हैं जी कि हमारा एम है कि डेट टू जीडीपी रेशो जो है उसको नीचे रखा जाए 2024-25 में और फिर इस चीज को आगे लेके जाया जाए. उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं ये 800 मिलियन स्पेंड करेंगे इनिशियल प्रोग्राम पे और फिर हम देखेंगे कि जो है ये आगे हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं. एक लेजर की रिपोर्ट आई है जिसको कि कमीशन किया था रीमैक्स ने जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ओवर 20% कनेडियंस यानी कि 1 in 5 जो कनेडियंस हैं वो ये कंसिडर कर रहे हैं अपना घर खरीदने के लिए ताकि अपने फैमिली मेंबर्स को उसमें रख सकें और ये जो हाउसिंग मार्केट है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम होम ओनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं और खासतौर पर जो लार्जर कनेडियन सिटीज हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बड़ी हाई हो गई है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया है तो इसलिए ओनरशिप की तरफ ये जाना चाहते हैं. वो कहते हैं जी कि ये जो रेजिडेंट्स जिनका हमने इंटरव्यू लिया 22 कैनेडियन सिटीज में तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि 48% जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि हाउसिंग लें और उसके अंदर थोड़े से ऑल्टरेशंस लेकर आए. 22% ने कहा कि हम हाउसेज को बाय करेंगे रेंट टू ओन में कि जिसमें हम कुछ हिस्सा घर का जो है वो रेंट पे चढ़ा सकते हैं. इसके अलावा किसी ने कहा जी कि हम को ओनरशिप कर सकते हैं एक फैमिली मेंबर्स के साथ. 21% ने यह कहा. उन्होंने कहा जी कि जरूरी नहीं है कि वो हमारा स्पाउस या पार्टनर होए बल्कि ये किसी और भी फैमिली मेंबर्स के साथ हम कर सकते हैं. 17% ने कहा जी कि हम घर को इस तरह से खरीदना चाहते हैं कि कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो हम उसको रेंट पे चढ़ा सकें. ये जो सारी की सारी रिपोर्ट थी ये प्रिपेयर की गई थी क्योंकि टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड ने भी कहा था कि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है टोरंटो होम की इन ऑल प्रॉपर्टी टाइप्स वो 1.3 मिलियन से ऊपर चली गई है थी इन फरवरी 2022 और जो था फिर लेकिन लेटर दैट ईयर यानी कि 2022 के एंड पे आते आते ये प्राइस जो थी तकरीबन जस्ट 1 मिलियन से थोड़ी सी ऊपर रह गई थी. तो इसलिए लोगों की वो कहते हैं जी मुश्किलात काफी हैं, रेंट पे भी जगह नहीं मिल रही, घर जो है वो भी एक्सपेंसिव हो गए हैं तो अब ऑल्टरनेटिव तरीके जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं. यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जी ज़ेलेंस्की साहब वो अब सऊदी अरबी पहुंचे हुए हैं और वहां पे वो बात करना चाहते हैं कि जी यूक्रेन को जो है हेल्प दी जाए. वो ना सिर्फ जो है सऊदी दूसरे ऑफिशियल्स बल्कि खास तौर पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा कहा था कि अगर आप रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्रोकर करना चाहते हैं पीस डील और अपने प्रिजनर सारे वापस बुलाना चाहते हैं, तो मैं उसके अंदर बड़ा अहम रोल यानी कि किंगडम जो है बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। तो उसी सिलसिले में ये यहां पे आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया इज वेरी क्लोज, इनफैक्ट ऑल द अरब कंट्रीज आर वेरी क्लोज टू रशिया बिकॉज ऑफ ओपेक प्लस, जिसका के हिस्सा रशिया भी है। और अपने एक्स के ऊपर बात करते हुए ज़ेलेंस्की साहब ने कहा जी कि सऊदी अरेबिया जो है बहुत एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है कि ये जो एक पीस फार्मूला है ये लाया जाए और ये जो फुल स्केल इन्वेजन है रशिया की इसको खत्म किया जाए, जबकि हम सेकंड एनिवर्सरी जो है वो अब इस वॉर की जो है वो आने वाली है उसको मनाएंगे। तो उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया अपना रोल प्ले करे और इस लॉन्ग जो रनिंग वॉर है इसको रोके। जाहिर है कि भाई अब और कितना अरसा इन्होंने वॉर लड़ी है, चाहे सारी दुनिया इनको वेपन्स दे रही है, बंदे तो इनके मर गए हैं ना बहुत सारे। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों साहब ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है जिसके के ऊपर आज बहुत ज्यादा खलबली मची, सारा वक्त आज ट्विटर के ऊपर यही ट्रेंडिंग कर रहा था। इन्होंने जनाब कहा है कि यूक्रेन की वॉर जो है वो सक्सेसफुली आगे चलाने के लिए और यूक्रेन के साथ खड़ा रहने के लिए हो सकता है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ग्राउंड ट्रूप्स भेजें, इसके साथ साथ कि वो इनको वेपन्स जो हैं वो दे रही हैं। इन्होंने कहा जी कि 20 ईयू लीडर्स जो हैं वो जो इस वक्त पेरिस में आपको पता ही है गैदर हुए हुए हैं टू टॉक अबाउट दिस यूक्रेन वॉर, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये जो क्रेमलिन का एक तो नैरेटिव हमको काउंटर करने की जरूरत है कि जी ये वॉर जो है चलती ही रहेगी और रशिया इसको जितना खींचना चाहेगा चलेगा, और उसके लिए हमको चाहिए कि ना सिर्फ रशिया की इस बात को हम डिफीट करें बल्कि हम अपने यूरोप की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपने ट्रूप्स भेजें। अच्छा, अब जब ये इन्होंने बात की तो व्हाइट हाउस जो है उसमें लोगों ने जर्नलिस्टों ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी यूएसए का कोई भी प्लान नहीं है या कि नेटो का भी इस वक्त तक कोई प्लान नहीं है कि वो ग्राउंड ट्रूप्स एक्चुअली यूक्रेन में भेजेंगे। इसके बाद जी थोड़ी देर के बाद ही जर्मनी और पोलैंड का भी आ गया स्टेटमेंट कि हम भी अपने फौजी जो हैं वो यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। इसके बाद जो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं बिल ब्लेयर साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जी हम भी नहीं भेजेंगे अपने ट्रूप्स को लड़ने के लिए यूक्रेन में। इसके ऊपर बात करते हुए क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नेटो जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर उसने यूक्रेन के अंदर अपने फोर्सेस भेजे, और ये वेरी थॉट, ये सोचना ही, ये पॉसिबिलिटी ही एक्सप्लोर करना कि जी हम अपने भेज सकते हैं ट्रूप्स, इसने रशिया को एक नई तरफ जो है सोचने के लिए मजबूर किया है। तो मतलब है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस चीज में तेजी आए तो मतलब है हाथ होला रखो, ठीक है जी। ऐसे अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी, और उसके मुताबिक तुर्की जो है उसने अब कहा है कि जो आज आखिरी दिन था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो ये इसराइल का ऑक्यूपेशन चल रहा है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पे, उस पर बात करते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा तुर्की ने कंडेम किया इसराइल की ऑक्यूपेशन ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। तुर्की के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं अहमद यिल्ज़िक, उन्होंने कहा जी कि जिसमें, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 52 कंट्रीज और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहा गया था कि भई आप भी आके टेस्टिफाई करें, तो तुर्की ने आखिरी दिन चुना था। तुर्की ने आज उसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये अगर हमको इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना है तो इसराइल और वेस्टर्न एलाइज जो हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल फेल हो गई है, और बड़े अरसे से कई दहाइयों से जो है ये इसराइल ने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टीनियन स्टेट्स पे और फिर भी वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये मेन इशू है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो हरम अल शरीफ है जिसको के मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं और ज्यूज उसको टेम्पल माउंट कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो हमेशा से जॉर्डेनियंस इसको जो है वो मैनेज करते थे बिफोर द क्रिएशन ऑफ इसराइल, तो हम चाहते हैं कि ये जॉर्डेनियंस के पास जाए। तुर्की जो है उसने ये भी कहा कि इन्होंने जो है बहुत सारे इसराइली जो है वहां पे अब्यूजेस कर रहे हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उस पे टेरिटोरीज पे, तो इसको भी आप रोकें। तो आज बहुत सख्त किस्म की जो है तुर्की ने बातें की हैं। द गार्डियन की ये स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक इसराइल और हमास के जो ऑफिशियल्स हैं आज उन्होंने बाइडन साहब की जो एक स्टेटमेंट आई थी उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन शो किया। आपको बताइए कि बाइडन साहब ने अभी कल ही बोला था कि मैं बड़ा होपफुल हूं क्योंकि मुझे जो है बताया गया है, ये बात कर रहे थे एनबीसी के लेट नाइट विद सेथ मेयर्स में, उन्होंने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है मेरे वो मुझे कह रहे हैं कि इस मंडे तक, आने वाले मंडे तक सीज फायर हो जाएगा हमास और इसराइल के बीच में, और जो है चीजें सब बेटर होने लगेंगी, खासतौर पर रमदान आ रहा है तो उसके लिए। इसराइल और हमास के ऑफिशियल्स ने आज उसको बड़ी हैरत से इस बयान को देखा। बैसम नाइम जो कि हेड ऑफ हमास के पॉलिटिकल डिवीजन है गाजा में, उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक इस तरह का कोई प्रपोजल फॉर्मली दिया ही नहीं गया कि सीज फायर की तरफ जो है वो हमने जाना है। हमारी तो जो लास्ट टॉक्स हुई थी पेरिस में जो कि मीडिएट की थी यूएसए इजिप्ट और कतर में, उसमें तो इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। इसके अलावा जो है अहमद अब्दुल हादी हमास के रिप्रेजेंटेटिव जो बेरूत में हैं, उन्होंने भी कहा जी कि इस तरह की तो कोई हमें प्रपोजल मिली नहीं है तो हमें पता नहीं है कि क्या कह सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हुए फर्दर इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि जी बाइडन साहब के ये जो कमेंट्स हैं ये दे कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि हमारे साथ तो वो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, ना हमारी लीडरशिप के साथ कोई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूएसए वाले, तो हमें पता नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं। और हमास की तो जो डिमांड्स हैं जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि आपको हम पुश बैक करेंगे, वो तो बिल्कुल मानने के लिए हम राजी नहीं है। तो बाइडन साहब ने क्या बात कही है उसके ऊपर हमको बड़ी हैरत है, हमको पता नहीं है कि ये क्या बात है। अच्छा जनाब, टेंशन्स जो हैं अब इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही हैं और लग रहा है कि ये वॉर जो है वॉर आगे 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 जा रही है। कॉन्स्टेंटली जो पहले था वर्ड ऑफ वॉर ऑफ वर्ड्स था और अब जो है एक्चुअल स्ट्राइक्स शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में जी लड़ाई बाकायदा शुरू हो गई है इसराइल लेबनान बॉर्डर के ऊपर। हिजबुल्लाह जो है उसने कहा जी कि हमने बहुत सारे लार्ज वॉलीज जो हैं वो फेंके हैं मैरॉन एयर बेस पे नॉर्दर्न इसराइल के अंदर। इसके अलावा इसराइल ने कहा जी कि हमने बहुत सारे जो सदर्न लेबनान के टाउन्स थे जिसके के अंदर जिपशेट और मंसूरी और दूसरे जो विलेजेस हैं लेबनान के साउथ में उसके ऊपर हमने अटैक किया है। इसराइल ने कहा जी कि हमने 40 रॉकेट्स जो हैं हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट्स जो हैं वो हमारे पे मारे हैं, और उसके बाद फिर इसराइल जो है उसने अपने एयरप्लेन्स जो हैं उनसे अटैक किया लेबनान के ऊपर। तो भाईजान ये लड़ाई जो है ये अब आगे 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 चलती जा रही है और ये खतरनाक होगी अगर इसको ना रोका गया। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज है जी, और इसके मुताबिक जो फार्मर्स हैं उनका आज अब सारी जगह ही फार्मर्स जो हैं सड़कों पे निकले हैं। आज बेल्जियम में जो है वो बाहर निकले हुए थे सड़कों के ऊपर और आज उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई इतनी कि वहां पे उन्होंने अपने ट्रैक्टर लाके सारी जो है वो खड़ी कर दी वहां पे रोड्स के ऊपर। तकरीबन 900 ट्रैक्टर्स जो हैं वो लेकर आ गए, और आपको पता है कि यहां पे जो यूरोपियन यूनियन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो हैं वो जमा हुए हुए हैं इसमें बेल्जियम के अंदर जहां पे कि ये वो बात कर रहे हैं। ब्रसल्स पुलिस जो है उसने कहा जी कि हमने इनको हटाने की कोशिश की है लेकिन ये हटे नहीं है अपने ट्रैक्टर, बल्कि इन्होंने लाके पूरी की पूरी जो रोड्स हैं उनको सारों को ब्लॉक कर दिया है, और ये जो अपने ट्रक थे ये यूरोपियन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बाहर लेकर आ गए, और हम जो हैं पुलिस वाले जो कंक्रीट बैरियर्स और बार्ब्ड वायर्स जो थी उनके पीछे हम खड़े रहे हैं, और जो है हम इन्होंने फिर पुलिस ने वाटर कैनन्स जो हैं उनके ऊपर फेंके ताकि ये और आगे की तरफ ना आए। फार्मर्स जो है बेल्जियम में वो कहते हैं जी कि ये जो मुल्क में बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म है और ये जो बहुत ज्यादा गलत किस्म के जो आपके जो रूल्स हैं अगेंस्ट जो कि फार्मर्स जाते हैं उनके खिलाफ हम जो है हमने ये मोर्चा निकाला हुआ है। इसके अलावा जो यूरोप के दूसरे शहर हैं वहां पे भी फार्मर्स सड़कों के ऊपर हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों साहब जो हैं वो भी अभी पेरिस एग्रीकल्चर शो के ऊपर जिस वक्त गए तो फार्मर्स ने उनको बू किया और उन्होंने कहा जी कि आपको हम बिल्कुल जो है आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं देंगे। इसी तरह स्पेन नेदरलैंड्स बुल्गेरिया यहां पे भी मैसिवली फार्मर्स जो हैं सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, एंटी फार्मर है, इनको ठीक करने की जरूरत है। आपको पता ही है कि यूरोप सारे के अंदर जून 6 से 9 के बीच में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा एडवर्सली इन चीजों को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है जी। और जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे विलेज टेस। फैसल चट्टा साहब के दो रेस्टोरेंट्स हैं, इनको आप कॉल कर सकते हैं। एक है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में, दूसरा है 2294 लेकशोर रोड वेस्ट के ऊपर ओकविल में। इनका नंबर है 9052262294। अगर आपको डालना है कोई ऑर्डर तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और जनाब, टैप टैप सेंड वो कहते हैं जी 30 बैंक्स जो हैं पाकिस्तान में उनमें आप डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं बड़ी आसानी से, जीरो ट्रांसफर फी है इनकी। खासतौर पर जो यूबीएल के बैंक हैं उनके अंदर तो आप बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड या एप्पल फोन है तो आप इसको इजीली इनका जो ऐप है उसको डाउनलोड कर दें, या ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें tap tap send.com। एंड जनाब ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਰਾਈਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਆਲ ਸਟੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਯੇ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਮੁਝੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਬਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇ ਆਪ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472903773। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਧਮਾਲ ਹੁਆ, ਵੈਸੇ ਤੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੌਨ ਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਆਜ ਯੇ ਹੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੋਰੀ ਆਡੀਓ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਡੀਓ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੋ PMQM ਹੈ ਇਸਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ MQM ਕੇ MQMP ਕੇ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਜੋ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹੁਆ ਐਸੇ ਥਾ ਕਿ MQMP ਕਾ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਥਾ PMLN ਲੀਡਰ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੋਏਗੀ PPP ਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਜਬ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਕਿਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਵੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਲਬਤਾ PPP ਨੇ ਹਮੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ MQMP ਕਾ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਵੋ 100% ਫੇਕ ਹੈ, ਔਰ PPP ਨੇ ਯੇ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ MQMP ਕੋ ਸਾਥ ਮੇਂ ਮਿਲਾਏ। ਤੋ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯੇ ਕੋਈ ਨਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਛਾਲਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਬਾਤੇ PPP ਵਾਲੇ ਓਪਨਲੀ TV ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਵੀ ਯੇ ਬਾਤੇ ਓਪਨਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ PPP ਕਾ ਮੈਂਡੇਟ ਫੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਯੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਸਕੋ ਬੜਾਏ ਔਰ ਨਾ ਇਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੇ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ। PTI ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੋ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਯੇ ਜੋ ਅਭੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲੈਜਲੀ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ। ਔਰ PTI ਕੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਯੇ ਜੋ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕੀਆ ਹੈ ਇਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ 45 ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਸਟਾਂਸ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਇਨਕੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀਆ ਉਸਕੋ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਕੋਰਟਸ ਮੇਂ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਮੇਂ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ PTI ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਆਮਿਰ ਡੋਗਰ ਔਰ ਜੁਨੇਦ ਖਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਫਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਡੈਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਟ ਉਨਕੋ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ PTI ਕੇ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਮਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਵੈਸੇ ਤੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਓਥ ਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ February 29 ਕੋ ਜੋ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਯੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਟੇ ਹਮਸੇ ਛੀਨੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ। ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਕੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਸਫਦਰ ਅਬਾਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ, ਫਾਰਮਰ MPA ਹੁਸੈਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਯੇ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮੇਂ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜੋ ਸਟੋਲਨ ਮੈਂਡੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਸਕੋ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਂਗੇ 3 million ਹਾਊਸਿਸ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਂਗੇ ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਉਨਕੋ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੀ ਇਲੀਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਅਲੈਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਕੱਲ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਜੋ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਮ ਇੰਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਹਮ ਇਨਕੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੇ ਥਰੂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਥੇ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਕੀ ਜੋ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕੀਏ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 1 ਯੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਆ ਜਬ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੂਵ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ 90 ਡੇਜ਼ ਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। तो वो भी नहीं हुआ था। और जिनको वोट मिले हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट उनको देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की रिगिंग भी नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको तो अब अपोजिशन में बैठना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है जिनकी सीट्स बनती हैं उनको दें और उनको बुलाएं बड़े दिल से कि आओ जी आप गवर्नमेंट बनाओ। तो ये सारा कुछ आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हो लेकिन इधर आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाता है। अच्छा जी बहरहाल, तो उन्होंने कहा जी कि उनसे पूछा गया बिलावल बीबी जरदारी साहब से कि जनाब आप बताएं कि आप अपोजिशन में बैठेंगे या गवर्नमेंट में आप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा जी कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ हाथ ना मिलाते तो लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते थे। वाह वाह क्या बात है, लोगों के प्रॉब्लम्स की आपको कितनी फिक्र है बीबी जरदारी, अपने लड़काना में जरा नजर डाल लो, पूरे पाकिस्तान की आप छोड़ो फिक्र करना, आप सिर्फ लड़काना की हालत देखो जाके, एक पिट होल जो है ना वो भी उससे शायद बेटर होगा जिस तरह का आपका लड़काना है, जहां से कि आपके नाना जी, आपकी वालदा, आपके वालिद, और अब आप भी तैयार बैठे हो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। हालत देखो लड़काना की, पाकिस्तान में शायद ही कोई इतना थर्ड क्लास और गरीब इलाका होगा जैसा कि आपका लड़काना है। बहरहाल जी वो कहते हैं जी लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैं बड़ा थैंक यू बोलता हूं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और पीटीआई को कि उन्होंने इजाजत दी हमें कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। पाया ना, अभी तो केसेस चल रहे हैं अदालत में, तो आपने वैसे ही अनाउंस कर दिया, अब आपने अगर ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं, वाह जी वाह क्या बात है। अच्छा जी फिर उन्होंने कहा जी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स को कैसे नॉमिनेट आप करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दानश्वर हैं माशाल्लाह, वो जो है नाम देंगे इनके प्रोविंशियल गवर्नर्स के। इसके अलावा जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब ने भी किया, उन्होंने भी परवेज सॉरी जो प्रेसिडेंट अलवी साहब हैं उनको कहा जी कि ये उन्होंने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, और नेशनल असेंबली जो है उसका तो जो सेशन है वो विद इन 21 डेज ऑफ नेशनल इलेक्शन जो होता है उसमें बुलाना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं बुला रहे, और अगर ये बुलाना चाहते हैं तो ये फरवरी 26, 27 और 28 को ये सेशन बुला सकते हैं। हुण इसहाक डार साहब नू भी कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया है, पायान तुसी जड़ियां लोगों नू मार मार के सीटा लईयां सारियां कोलों ओ कॉन्स्टिट्यूशन दे मुताबिक है इसहाक डार साहब, तो उसका जवाब दो। यानी कि इस मुल्क में वैसे हम इधर बेचारे वैसे रणा सनाउल्ला को मजबाई कितना खींचते थे, बट आई मस्ट से कि पाकिस्तान में एटलीस्ट कितनी कितने करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ की वजह से 22 करोड़ की आबादी है ना, 22 करोड़ में एटलीस्ट तीन मर्द तो जरूर हैं, हैं जी, एक जो है वो मौलाना नईम JUI के हैं, एक रणा वैसे सनाउल्ला, एक साद रफीक, जो जिनको के कहा गया कि भाई आपको हम जिता रहे हैं, उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं जीते, पीटीआई वाले जीते हैं, और उन्होंने उनको जो है मुबारकबाद दी। तो एटलीस्ट तीन तो मर्द के बच्चे हैं इस मुल्क में, क्या बात है, 22 करोड़ की आबादी में तीन मर्द के बच्चे हैं, वाह वाह वाह, दिल खुश किया। अच्छा जी आगे चलो। अच्छा जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने जो डिसीजन लिया है कि जी नेशनल असेंबली का सेशन नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि पूरी सीटें जो है लोगों को एलोकेट नहीं कर दी जाती, उसको इमरान खान ने बड़ा एंडोर्स किया। आज अडियाला जेल रावलपिंडी में जर्नलिस्टों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जनरल इलेक्शंस जीती है और ये मैंडेट जो था पीटीआई का था नवंबर 9 जो था उसको यूज किया गया पीटीआई को खत्म करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, आपने जो ऑपरेशन किया उसकी वजह से ये पार्टी और स्ट्रांग होकर सामने आई। उन्होंने कहा जी लेटर जो हम IMF को मैं तो लिख नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे तो पेन और कागज तक भी नहीं दिया गया और इसको ट्रीजन कहा जा रहा है, इसमें कुछ ट्रीजन जैसा नहीं है, मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया है कि ये लेटर जो है IMF को लिखा जाए, क्योंकि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो IMF ने कहा था कि अगर इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे तो ही हम आपका एक्सटेंड करेंगे। तो कहते हैं जी मैं उनको बस याद कराना चाहता हूं, सिर्फ उनको याद कराना चाहता हूं कि ये मेरे साथ उन्होंने वादा किया था, तो वो कहते हैं लेकिन ये वादा मैं अकेला नहीं ले सकता, मेरे साथ इस वक्त तक पार्टी जो लीडर्स हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वो जब मेरे साथ पार्टी लीडर्स मिलेंगे मैं उनके साथ कंसल्टेशन करूंगा और फिर हम ये लेटर लिखेंगे, और हम जो हैं बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि जो है यहां पे इकोनॉमिक किसी तरह की कोई इंस्टेबिलिटी आए, ये लेटर जो है इस ये उनके वादे को याद कराना है और मुल्क की और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम राइट फैसले जो है वो करें। इमरान खान साहब और उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी साहिबा को उनको जी नैब की अदालत ने आज इंडाइट किया है इन 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट केस जो के रिलेटेड था अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के साथ। तो आज दोनों ही ये जो है कोर्ट रूम में मौजूद थे, सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं वो भी यहां पे थे, राणा नासिर जावेद राणा जो थे उन्होंने ये पढ़ के इनको इंडाइटमेंट सुनाई और उन्होंने कहा जी कि ये जो सैकड़ों रुपए कनाल की जो जमीन थी ये आपने ले ली और नेशनल एक्सचेकर को बड़ा जो है नुकसान उससे पहुंचा है, इसमें 58 विटनेसेस के भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। जज साहब ने पूछा इमरान खान साहब को कि क्या ये चार्जेस जो है इसमें आप गिल्टी हैं, इमरान खान साहब ने कहा और आप ये क्या ये इंडाइटमेंट पढ़ना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और फिर इन्होंने और इनकी बीवी ने ये चार्जेस जो हैं इनको डिनाई किए। मुझे समझ नहीं आ रही, मजदूरी जरा समझाएं मुझे, मेरी नाकस अकल में समझ नहीं आ रही कि ये जमीन इन्होंने कैसे कब्जा की हुई है, क्योंकि उसके ऊपर तो अल कादर ट्रस्ट बना हुआ है जी, और वो जो ट्रस्ट है उसके अंदर वो चल रहा है, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कैसे वो जमीन चोरी की हुई है?
ओरिजिनल बात कर रहे हैं, जब
चोरी की थी,
जब किया था ना, उस वक्त की बात है ये।
अच्छा,
अभी की बात नहीं है,
अभी
तो देर हो गई है,
अभी देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने चोरी किया तो फिर इनके कब्जे में होनी चाहिए थे ना, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी कैसे बनी हुई है, उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे बना हुआ है, उसमें लोग कैसे पढ़ रहे हैं और फ्री पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं भाई, तो वो तो पैसा तो उधर आ नहीं रहा है, तो पहले फिर ये कैसे बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके गल नहीं। अच्छा जी, आपके जो है फेवरेट पॉलिटिशियन मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी आज उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने पार्टी लीडर्स के साथ पिशावर में, और उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज जो है हम जो सुन रहे थे आज, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि ये जो फाउंडेशन है 2024 के इलेक्शंस के बाद ये बहुत ही वीक है, और इस तरह की जो पार्टी है वो अपना जो है मैंडेट पूरा नहीं कर सकेगी, ये चला नहीं सकेगी। वो कहते हैं जी मुझे पता चला है कि JUIF को के लिए ये डायरेक्टिव दिए गए थे कि इनको असेंबलीज के अंदर नहीं बिठाना है, मैस रिगिंग की गई है मुल्क के अंदर, और जो आज इस गवर्नमेंट के साथ लग के बैठे हुए हैं वो कल रोएंगे, और मुझे पता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, इनको पता होना चाहिए कि ये इस तरह की चीजें जो है ज्यादातर चलती नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। और उन्होंने कहा जी कि जो जो लोग जो जो कैंडिडेट्स विन किए हैं, खासतौर पर जो PTI जो इमरान खान की पार्टी है जो कहती है हमको मेजोरिटी सीट्स मिली हैं, अगर उन्होंने विन किया है तो उनको उनकी सीट्स जो है वो देनी चाहिए। इमरान खान का जो लेटर वो लिखने वाले हैं IMF को, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि किसी भी फॉरन अदारे को कोई भी लेटर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये किसी भी मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस समझी जाती है। तो पायान फिर आपने बेनजीर भुट्टो को क्यों नहीं मना किया जब 2007 में उसने लेटर लिखा था IMF को, हैं पायान उस वेले थे तुसी माशाल्लाह गुडीज एंजॉय करना चाहते हो, हैं जी। अच्छा जी अगे चलने हैं। अच्छा जनाब, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने आज जम्मू एंड कश्मीर की जमात इस्लामी जो है उसको 5 और साल के लिए बैन कर दिया है। इसकी जो इतला है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दी है, उन्होंने कहा जी कि इस जमात की बहुत ही एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं, जिसकी के वजह से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है वो अंडरमाइन ये लोग करते हैं, और हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो इस तरह का काम करें। एक्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, और हम उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे जो कि मुल्क के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हमने ऑलरेडी ही इनको 2019 में ही डिक्लेयर किया था अनलॉफुल एसोसिएशन, और उसके लिए जो है हम इनको बिल्कुल इस तरह का काम करने नहीं देंगे। लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं जो इन चीजों को कवर करना चाहते हैं जनाब, सख्तियां तो उनके ऊपर भी बड़ी हैं। अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट वो कहते हैं जी कि ये जम्मू और कश्मीर के अंदर कभी एक चीज बंद की जाती है, कभी दूसरी की जाती है, और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता है कि हम फाइंड आउट करें, तो हम जर्नलिस्ट अपने भेजते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट यहां पे जम्मू और कश्मीर को कवर करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें असैसिनेशन, इम्प्रिजनमेंट और बीटिंग जो है सिंस 1990 उसका हमें सामना करना पड़ रहा है, हमें हरेस किया जाता है, हमको अपने काम नहीं किया जाता, हमारे खिलाफ चार्जेस लगाए जाते हैं विच इज कंप्लीट वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन इस एनवायरमेंट में फ्री रिपोर्टिंग जो है वो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ते पायन की चल रहे हैं, पायन व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर कंट्री, ठीक है जी, लाइक जस्ट लाइक पाकिस्तान क्यों। अच्छा जनाब, राहुल गांधी ने आज यूपी के अंदर एक रैली से बात कर रहे थे, और उन्होंने आज दलित जो लोग थे या कि लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम सो क्यों रहे हो, तुम लोग जाग क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो 200 टॉप कंपनीज हैं क्या उसमें तुम्हारा हिस्सा है, क्या तुम लोग जुडिशरी में बैठे हो, क्या तुम लोग मीडिया में बैठे हो, क्या जो सिविल सर्वेंट क्लास है जो कि इस मुल्क को रन कर रही है क्या तुम उसमें बैठे हुए हो, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है तुम्हें पागल बना रहे हैं। इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसका 73% जो है वो लोअर कास्ट है, लेकिन तुम लोग कहीं पे भी नजर नहीं आते हो, तुम लोग डिसीजन मेकिंग में नजर नहीं आते हो। अपने एक्स पे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के फ्यूचर की दुश्मन है, स्टूडेंट्स को ही देखो उनके साथ क्या कर रही है, कभी वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही, कभी उनका पेपर लीक हो रहा है, कभी वो जी कोर्ट्स को विजिट कर रहे हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है जब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट बुरी तरह से फेल हो चुकी है, कोई काम तो ढंग का कर नहीं रही है, ना तो पुलिस को एक रिक्रूटमेंट दे रही है, ना नौजवानों को, ना रेलवे के कोई मसले सीधे कर रही है, ना तो मिलिट्री के मसले कोई सीधे कर रही है, और अपना सारा गुस्सा जो है वो यूथ पे निकालती है। तो आज जनाब इन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो स्पीच की, ठीक है जी। और जनाब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिनकी डेथ हो गई थी, इनको मर्डर कर दिया गया था अनफॉर्चुनेटली मई 2022 में। आपको पता ही है कि अपने मां बाप के वो वाहिद बच्चे थे, लेकिन अब न्यूज आई है कि उनकी जो वालदा हैं चरण सिंह साहिबा, उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया है और उसकी वजह से उनका दूसरा बच्चा आने वाला है, और ये बच्चा जो है ड्यू है मार्च में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो एक तरफ तो सिद्धू मूसेवाले की ये अच्छी खबर है, दूसरी सिद्धू मूसेवाले से जो रिलेटेड खबर है वो इनके जो दोस्त थे पंजाबी म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट बंटी बेन्स, आज वो मोहाली के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे सेक्टर 79 में, जब उनके ऊपर अटैक किया गया बड़ा जानलेवा, उसमें ये तो बच गए, वहां से भाग निकले, लेकिन फिर उनको कॉल आई कि जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर है अलेजली लकी पटियाल ग्रुप, उसने कहा जी कि अगर तुम 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर इसी तरह से अटैक्स करते रहेंगे। तो अब जो जो बेचारे सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड हैं लोग, वो अब बड़ा डर गए हैं और वो कहते हैं भाई पायन इस चीज को आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं। रणदीप हुड्डा जो हैं वो अब जो उनकी नई फिल्म आ रही है दामोदर सावरकर के ऊपर, उसमें नजर आएंगे। मूवी का नाम है सवतयत्रा वीर सावरकर। तो वो कहते हैं जी कि सावरकर साहब ने बहुत सारा अरसा जो है जेल में गुजारा था इन कल्पानी, तो मैंने भी जेल में अपने आप को बंद कर लिया था, और मैं सोचना चाहता था कि इनको क्या फील हो रहा था उस जेल के अंदर। वहां से जेल से आज इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर डाली हैं, और उन्होंने कहा जी कि इस फिल्म को प्ले करने के लिए मुझे भी उस छोटे सेल में रहना पड़ा टू फील जो सावरकर साहब जो हैं वो फील कर रहे थे। कल हमने आपको बताया था कि अनफॉर्चुनेटली पंकज उदास साहब की डेथ हो गई है। आज उसके ऊपर जो लेजेंडरी फिल्म मेकर है महेश भट्ट साहब, उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जो बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग जिसके बाद ये बड़े मशहूर हो गए थे चिट्ठी आई है, जो इनकी फिल्म 1986 में आई थी नाम, उसमें इन्होंने गाई थी। तो कहते हैं जी इनिशियली तो जब मैंने पंकज उदास साहब को कहा कि तुमको ये गाना गाना है और फिल्म में एक्टिंग भी करना है, तो उन्होंने तो ना कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो महफिलों में गाने वाला सिंगर हूं, ये एक्टिंग वैक्टिंग मुझसे नहीं होती। तो वो महेश भट्ट साहब कहते हैं मैंने उनको कहा कि तुमको यही करना है, फिल्म के अंदर भी हम स्टेज से जाएंगे, उस पर आप बैठोगे, आप गाना गाओगे। तो कहते हैं बड़ी मुश्किलों से जो है ये राजी हुए। तो इन्होंने मुझे कहा कि महेश साहब मैं शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकूंगा, लेकिन क्या बात है, इन्होंने बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस जो है ये अच्छा गाना गाया और ये बड़ा जो है हिट रहा, वाकई बड़ा हिट रहा। मोहम्मद आमिर साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी इनको ये जो है मरियम नवाज साहिबा जो अभी प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की, उनको कहा जी कि जो मुल्तान के डीसी हैं उन्होंने मेरी फैमिली को पीएसएल एक मैच के अंदर बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया। अपने एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा कि उसका बिहेवियर जो था अनएक्सेप्टेबल था और बड़ी एरोगेंस से उसने उनके साथ किया, और बल्कि मेरी फैमिली को मैच के बीच में से निकाल दिया। तो ये जो अब्यूज ऑफ पावर है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अथॉरिटीज को कहा कि जी आप एक्शन लें, और मरियम नवाज साहिबा को भी कहा कि इस डीसी मुल्तान के खिलाफ आप एक्शन लो। और जनाब पेशावर जर्मी के जो स्किपर हैं बाबर आजम साहब, जो कल उन्होंने 100 रन बनाए थे, उन्होंने कहा जी कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग, मेरी मां लेकर आई थी। मेरी मां वैसे तो मेरे सारे मैचेस जो है वो घर से देखती है, लेकिन ये जो 13th मैच ऑफ पीएसएल था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसमें कि इन्होंने 100 रन वो स्कोर किए, वो कहते हैं जी मेरी मां स्टेडियम में बैठी देख रही थी, तो मेरे लिए ये गुड लक लेकर आई हैं, तो बड़े ये खुश हुए। और पीएसएल का जो टेबल टॉपर है जी मुल्तान सुल्तान, उन्होंने जनाब आज फिर से डिफीट किया डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 60 रन से, और अपनी 6 कंसेक्यूटिव लॉस जो है इन बेचारों ने देखी अंडर शाहीन शाह आफरीदी। और सुल्तान मुल्तान जो है उन्होंने टॉस पहले विन किया था और उन्होंने कहा था कि हम पहले बैटिंग करेंगे। उस्मान खान जो है उन्होंने आज इनके लिए 96 रन बनाए, एंड ऑल टुगेदर इन्होंने जो है मुल्तान सुल्तान ने 214/4 जो है रन बनाए, और इन्होंने शाहीन शाह आफरीदी की टीम को 154 पे रिस्ट्रिक्ट किया। नामीबिया के जो बैट्समैन है जेन निकोल लॉफ्टी, उन्होंने जनाब आज बड़ा जबरदस्त जो है T20 का एक जो है रिकॉर्ड कायम किया है, अपने 100 रन सिर्फ 33 बॉल्स पे उन्होंने बनाए हैं अगेंस्ट नेपाल। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये नेपाल के कुशल मल्ला के पास था, जिन्होंने 34 बॉल्स पे 100 रन बनाए थे अगेंस्ट मंगोलिया लास्ट ईयर, और इन्होंने जो है 11 फोर्स और 8 छक्के जो है मारे हैं, और 101 इन्होंने जो रन बनाए थे 36 डिलीवरीज पे बनाए। और वो कहते हैं जी कि ये फर्स्ट T20 ऑफ नेपाल जो है अब ट्राई नेशन T20 सीरीज जो है होएगा अगेंस्ट द होस्ट नामीबिया जो है, उसने 206 बनाए थे फॉर 4 इन 20 ओवर्स, और उसके बाद फिर इन्होंने इनको हराया था। क्रिस गेल जो है उनकी लेकिन जो है अभी तक टॉप पे रिकॉर्ड है। क्रिस गेल ने 100 रन बनाए थे ऑफ 30 बॉल्स इन 2013 आईपीएल जो हो रहा था एंड ही स्टिल हैज द फास्टेस्ट T20 टन का रिकॉर्ड। तो लेकिन अब ये जो है ये भी ऊपर ऊपर आ रहे हैं। और जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, जिसके के बाद माजिद भाई अपने सूखे पत्तों की ये खबर दे सकते हैं कि क्या वो 8वां मैच जीत सकते हैं कि नहीं, तो वो हम खबरें नहीं देते हैं, वो मजे के लिए छोड़ी होती हैं। लेकिन ये हमारी जो आखिरी खबर है वो टोरंटो के ऊपर एक और बिजली गिराई है ओंटेरियो ने कहा है फीफा वर्ल्ड कप के लिए और पैसे नहीं दिए जाएंगे। स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा है जी कि ऑलरेडी ओंटेरियो ने कमिट किया है 97 मिलियन और इससे ज्यादा बिल्कुल हम एक्सीड नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि टोरंटो के अंदर फीफा के 6 गेम्स होंगे और बाकी जो है फिर वैंकूवर में होंगे, कुछ यूएसए में, कुछ मैक्सिको में, क्योंकि ये 3 कंट्रीज जो है मिलकर फीफा वर्ल्ड कप करने हैं। और देखो छोटा जिया टिड्डा जिया कतर उसने कल्ला कीता है, हैं जी, हाँ जी, फीफा दावा का। बहरहाल जी ये जून 12, 2026 में ये लोग जो हैं जो ओपनिंग मैच होगा उससे मैचेस जो शुरू होंगे तो ये 3 कंट्रीज करवाएंगे। वो कहते हैं जी कि ये पैसे जो थे स्प्लिट किए गए थे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के। टोरंटो ने ओरिजिनली कहा था कि हम 90 मिलियन जो है कमिट कर रहे हैं और फिर बाकी हमें दूसरी जगह से पैसे आने हैं। तो वो कहते हैं जी ओंटेरियो के हम ज्यादा और इनको अब नहीं देंगे, ये ज्यादातर पैसे जो है अपग्रेड्स एंड डिजाइन पे जाएंगे बीएमओ फील्ड के, क्योंकि कुर्सियां ही पूरी नहीं है जी अकॉर्डिंग टू फीफा जो है वो क्लासिफिकेशन के कैसा होना चाहिए है जो है स्टेडियम। और ये गेम्स जो है लेकिन बड़ी अच्छी होंगी टोरंटो के लिए क्योंकि 24 घंटे तो तुम्हें पता ही है टोरंटो पैसे मंगता है। कहते हैं ये जो गेम्स हैं ये टोरंटो को $392 मिलियन अर्न करके देंगी और ओवरऑल ओंटेरियो के अंदर $456 मिलियन जो है वो आएंगे। मैं जी पहन खुश हूँ,
फायदे का सौदा है।
लेकिन इन्होंने को ऐसा कोई स्टेडियम ही नहीं जितने कुर्सियां भी पूरी,
और थोड़ा से पैसे और बढ़ा दो स्पॉन्सर्स के,
बिल्कुल
साहब आप थोड़े पैसे और बढ़ा दो उनके, 6 दिन कवर कर लेना अपना।
आहो आहो, तो स्पॉन्सरों का क्या है, स्पॉन्सरों ने सारे पैसे जो है वो टिकटों से निकाल लेने हैं।
आप ये सूखे पत्ते जो कहती है ना कहना छोड़ दें,
हाँ, 8वां मैच जीतने वाले हैं,
8वां मैच आज रात को जीतने वाले हैं टोरंटो मेपल लीफ्स अगेंस्ट लास वेगस गोल्डन नाइट्स।
अच्छा,
एंड बीट कर दिया उसको तो 8वां गेम इन अ रो, 8 गेम इन अ रो एंड नॉट जस्ट द पॉइंट्स इज द विनिंग। सो तौबा करें, टांग हाथ लगाएं अपने,
ठीक है।
एंड आपने इतना मजाक उड़ाया रैप्टर्स का,
हाँ क्या रैप्टर है, बड़ी रैप्टर मार रही
है, रैप्टर है, हाँ,
किसको रैप्टर मारे हैं इन्होंने, अब किसको रैप्टर मारे हैं,
कल रात को उन्होंने इंडियाना पेसर्स
को रैप्टर मारे,
वो रैप्टर ऐसे ऐसे रैप्टर मारे, रैप्टर मार मार के उनको मुंह सुझा दिया उनको और फिर वो जीत गए।
अच्छा,
तीसरा गेम इन अ रो,
हो क्या हुआ अचानक से, ये प्रोटीन ज्यादा खाना शुरू,
335 गेम्स के बाद 3 गेम इन अ रो जीते,
व्हाट अ बिग अचीवमेंट,
ग्रेट अचीवमेंट।
हो
अच्छा, उनके जो मैनेजर है ना तो उन्होंने कहा कि अगर आप आज का गेम जीत जाएंगे मीन्स लास्ट नाइट के,
हाँ,
अपनी टीम को,
हाँ,
तो आई विल टेक यू ऑल ऑफ यू विद इंक्लूडिंग स्टाफ टू
टिम हॉर्टन्स कॉफी
डिनर। यार प्लीज,
ये मैं तुम्हें सारे टिम हॉर्टन की कॉफी बुलावगा $1.5 की,
नो डिनर एंड ही टुक
किधर टिम हॉर्टन्स में,
नो बात छुपी हुई अभी। क्राफ्टर्स बीट इंडिया द पेसर्स 3 गेम्स इन अ रो एंड टोरंटो मेपल लीफ्स आर गोइंग फॉर द 8th इन अ रो, गोल्डन नाइट्स लास वेगस दे आर इन टोरंटो एंड आई लेट यू नो टुमारो क्या होगा। अगर मैं ऐसे करके न्यूज पढ़ाई तो
इसका मतलब 8वां मैच हार चुके हैं।
अगर मैंने ऐसे करके न्यूज पढ़ी इसका मतलब ओ समथिंग रॉन्ग,
ठीक है जी, चलो जी ये थी हमारी खबरें।
7 बजे गेम है हमारा टोरंटो मेपल लीफ्स एंड लास वेगस नाइट्स,
नाइट ही आ जाते जंगल,
बट दे आर गोल्डन नाइट्स,
हाँ गोल्डन नाइट्स, ठीक है जी, ओके जी।
हमारी आज की खबरें शादी जी, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ताला बकिया की बातें कल होंगी आपको इसी टाइम पर। अब मैं आपको लिए चलता हूँ प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान एंड एंजॉय द प्रोग्राम, बाकी की बातें कल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज।
सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिले, एक हम सफर हर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं सवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे।
I'm not afraid. खुल गई पटक दी अख की गली दे
करती हूँ मिन्नतें।